नमस्कार, जय गुरुजी। गुरुजी के आदेश पर बैम्बी आंटी द्वारा लिखे ग्रंथ गुरुजी महाराज गुरुजी माय फादर का हिंदी में अनुवाद और प्रस्तुतिकरण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, गुरुजी मेरे पिता, गुरुजी मेरे पिता, मेरे परम पूज्य पिता, इन पन्नों में मेरी आत्मा असज्जित है, किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं। परंतु परवाह है भी, क्योंकि आपके नैनों की गहराई मेरी हर सोच से वाकिफ है। स्वयं को अनावृत महसूस कर रही हूं, लेकिन आपका कहा हुआ हर शब्द बताना अनिवार्य है। मेरे पिताजी, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं तो आपकी रोशन रूह की केवल एक नन्ही सी झिलमिलाती हुई किरण हूं। आपकी बेटी बैम्बी। अध्याय एक। गुरुजी महाराज। हमारे गुरुजी महाराज, यही था उनका नाम। मुझे यह नाम गुरुजी महाराज पसंद है, गुरुजी ने अहमियत देते हुए अपनी दिव्य आवाज में कहा था। तरल, कोमल, निर्मल। गुरुजी महाराज का जन्म पंजाब के एक गांव डुगरी में एक सिख परिवार में हुआ। बचपन से ही गुरुजी आध्यात्मिक विचारों के थे और उन्होंने अपने बचपन का अधिकतर समय पूजा पाठ और सांपों के साथ खेलने में बिताया। उनका अपनी माता के प्रति बहुत प्रेम था और 3 साल की नन्ही आयु में भी वे अपनी दिव्य लीला से अचानक अपनी पीठ के पीछे से गुलाब के फूल प्रकट करके अपनी माता का मन मोह लेते थे। हमारे गुरुजी का रहन सहन बहुत सरल था। हालांकि उनका एक भी चोला उनका अपना नहीं था, वे संगत के दिए हुए अनोखे और सुंदर चोले पहनते थे। हमने उन्हें दुनिया के हर कोने से आए हुए जूते पहने देखा, लेकिन उनके पास एक भी अपनी जूती या चप्पल नहीं थी। जो जाली वाली बनियान में डालते थे, वह भी उनकी नहीं थी। सब कुछ पहनकर दूसरों को दे देते थे। केवल दाढ़ी काटने का सामान, शेविंग किट उनका अपना था, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें शरीर पर बाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक शाम गुरुजी ने मेरे पति सैटी और मुझे जिंदगी जीने का तरीका समझाया। जिंदगी में सरलता ही प्रसन्नता का उपाय है, निपुण अंग्रेजी में दिए हुए इस 45 मिनट के व्याख्यान को सुनकर हम आश्चर्यचकित रह गए। उस कथन का सार कुछ ऐसा था, जिंदगी का पूरी तरह से आनंद लो, दुख से सीखो और आध्यात्मिक उन्नति करो, स्वयं को दुख से दबने ना दो, मैं हमेशा सब कुछ संभालने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे महाराज का यह कथन उनकी दिव्यता और ममता के भाव का प्रतीक है और उनके हर अनुयायी के लिए सत्य वचन है। उनके जीवन का हर पहलू हमारे लिए एक तालीम थी, यहाँ तक कि उनके भीतर और उनके आसपास की शुद्धि और सफाई भी बहुमूल्य शिक्षा थी। जब तुम मेरी शरण में आते हो, तुम झूठे बर्तन के जैसे होते हो। मैं इसलिए तुम्हें पहले अंदर से फिर बाहर से चमकाता हूँ। गुरुजी कहते थे कि ईश्वर ने मनुष्य को 5 चोर दिए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो मनुष्यों के कर्मों पर प्रभाव डालते हैं। गुरुजी चाहते थे कि उनके सब भक्त इन 5 चोरों के बंधन से मुक्त हो जाएं। गुरु साहिब को सफाई बहुत पसंद थी। वे अक्सर राम अवतार बड़ा माली से कहते, कम करन दे टाइम, कपड़े नू वट नहीं पहना चाहिदा, ना गंदा होना चाहिदा है। काम करते समय तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। वे अक्सर कहते थे, उस कमल के फूल को देखो जो कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना निर्मल रहता है कि पूजा में भगवान के चरणों में अर्पित होता है। ऐसे ही आसपास की गंदगी के बावजूद हमारा मन साफ होना चाहिए। एक बार तकरीबन 7 साल की एक बच्ची अपनी माँ के साथ पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसे सफेद दाग की बीमारी थी, जिसे हिंदी में फुलबहरी या फुलवारी कहा जाता है और अंग्रेजी में विटिलाइगो कहा जाता है। उसे देखकर हमें उसके प्रति बहुत हमदर्दी महसूस हुई और हमें यकीन था कि गुरुजी उसका रोग हर लेंगे। गुरुजी तो हमारे मन की बात जानते थे और हमारे आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और समझाया कि वह बालिका निरोगी क्यों नहीं हो सकती। गुरुजी ने कहा, मैं भी सृष्टि के कुछ नियमों में बंधा हूं। इसका कर्म मेरे आशीर्वाद में बाधा है, क्योंकि इसने अपने पिछले जन्म में एक संत के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसी कारण से मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। यह सुनते ही हमारे मन में कई प्रश्न उठे। अगर हमें हमारे पिछले जन्मों की गलतियों की जानकारी ही नहीं है, तो हमें क्यों और कैसे उनकी सजा मिलती है? खुदा की इस नाइंसाफी को कोई कैसे समझ पाए? गुरु साहिब ने हमें समझाते हुए कहा, ईश्वर की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब हम उस परमात्मा के पास होते हैं, हम स्वयं अपने जन्मों का रेखा चित्र बनाते हैं और निर्णय लेते हैं कि आने वाले जन्म में कौन से कर्मों का भुगतान करेंगे। जैसे कि हम किससे शादी करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, किसके साथ कर्मों के खाते का हिसाब चुकाएंगे इत्यादि। तो अब अगला सवाल यह था कि अगर सब कुछ पहले से ही निश्चित है, तो फिर हमारे जीवन में गुरु और पूजा का क्या महत्व है? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, इंसान को अपने जीवन में अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलते हैं, और जब वह वक्त आता है तब इस निर्णय का निस्वार्थ होना आवश्यक है। उस समय इंसान को किसी से भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती। यह निर्णय उसे स्वयं ही लेना पड़ता है। गुरुजी ने कहा, जब मेरा शागिर्द पहले साल में मेरे पास आता है, तब वह मेरी शरण में रहना चाहता है या नहीं, यह उसकी मर्जी होती है। जब वह मुझे गुरु के रूप में स्वीकार लेता है, तब से वह हमेशा के लिए मेरा हो जाता है, चाहे वह धरती पर सबसे बुरा इंसान ही क्यों ना हो। उस वक्त के दौरान मैं भी निर्णय लेता हूं। मैं सर्वप्रथम अपने भक्त का भगवान के प्रति प्यार और श्रद्धा देखता हूं, फिर उसके पिछले कर्म और उसके पश्चात ही मैं उसकी मेरे प्रति निष्ठा को आजमाता हूं। अगर उसकी मुझ में सच्ची श्रद्धा है, तो मैं उसे स्वीकार कर उसका अधिकतर कर्म स्वयं पर ले लेता हूं। जो भी बुरा वक्त उसके नसीब में भविष्य के लिए लिखा होता है, मैं वह सारा कम समय में कटवा देता हूं। फिर गुरुजी ने कहा, मैं उसके सारे बुरे कर्म अपने ऊपर इसलिए नहीं लेता, क्योंकि इंसान इस धरती पर सीखने आया है, और इसलिए वह तलवार की धार से बेशक न घायल हो, लेकिन उसे सुई की चुभन तो महसूस होनी ही चाहिए। गुरुजी ने हमें समझाते हुए कहा, इंसान के रोग पिछले कर्मों के परिणामवश होते हैं। मुझे सबसे पहले शरीर के भीतर बसी हुई बीमारी की जड़ को हटाना होता है। अगर मैं पहले बीमारी को जड़ से निकालने के बजाय ऊपर ऊपर से ठीक कर दूं, तो वह बार बार सताएगी। इसलिए बीमारी को जड़ से मिटाना अनिवार्य है। गुरु साहिब बार बार समझाते थे कि पूजा की बचपन से ही छोटी छोटी मात्रा में मूल बातें सिखानी चाहिए, ताकि छोटे बच्चों में प्रार्थना की नींव जन जन्मांतर के लिए मजबूत हो। अगर मैंने मन या शरीर को केवल ऊपर से चमका दिया, तो भीतर की मैल तो वैसे की वैसे रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हारे मन और शरीर की ऊपरी चमक के लिए तुम्हें पहले भीतर से साफ करता हूं। मेरी सारी सखियों में से गुरुजी ने केवल अनीता कुमार आंटी को अपनी शरण में स्वीकारा। आंटी जब स्किन कैंसर और दमा के रोग के साथ गुरुजी के पास आई थी, तब उनकी जन्म पत्री के मुताबिक वे कुछ ही दिनों या महीनों की मेहमान थीं। आज वे इन दोनों बीमारियों से मुक्त हैं। कदाचित वे संगत में सबसे पवित्र, उन्नत और विनम्र आत्माओं में से एक हैं। एक बार हमने उत्सुकतावश गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अगर आप जानते हैं कि आपके सब भक्त हकीकत में कैसे हैं, तो अगर कोई चोर आकर मेरे साथ बैठ जाए, फिर आप क्या करेंगे?
गुरुजी ने जवाब दिया कि वे उस चोर को हमसे भी पहले आशीर्वाद देंगे, एक तो इसलिए कि वह संत के पास आया और दूसरा कारण यह कि शायद वह फिर कभी लौट कर ही ना आए। गुरुजी ने यह भी कहा, मैं भाई बहन पति पत्नी को भी एक जैसा नहीं बल्कि अलग अलग व्यक्ति की भांति प्यार करता हूँ, क्योंकि उन सबकी मेरे प्रति निष्ठा और भक्ति भिन्न भिन्न स्तर की होती है। कोई भी बहन भाई या दंपति मुझे एक समान प्यार नहीं करते, ना ही उनकी मेरे प्रति निष्ठा एक जैसी होती है, इसलिए उन पर मेरी कृपा भी एक जैसी नहीं होती। मेरा तुम भक्तों के लिए निस्वार्थ प्रेम तुम सबकी निस्वार्थ भक्ति पर निर्भर करता है। अध्याय 2, प्रार्थना की विधि। प्रार्थना जीवन का सार है। एक दिन जब मैं गुरु साहिब के पास बैठी हुई थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन सी प्रार्थना करती हो? मैंने बड़ी शान से प्रार्थनाओं की एक लंबी सूची बताई, जिसे बड़ी रुचि के साथ सुनने के पश्चात उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जो भी पूजा करती हो उन सब को छोड़कर घड़ी से 5 मिनट के लिए केवल समाधि में बैठो। अब सवाल यह उठा कि मैं किस मंत्र पर ध्यान करूं? गुरुजी ने कहा, जो भी तुम्हारा मन करे उसी मंत्र पर ध्यान करो, लेकिन 5 मिनट से पहले मत उठना और ध्यान लगाने के लिए एक चटाई पर बैठना। प्रार्थना हो जाने के बाद चटाई को धन्यवाद करना, वरना चटाई को प्रार्थना का आधा लाभ मिल जाएगा। यह तो आसान काम था, इसलिए मैं एक सन्यासिन की तरह एक लाल चटाई पर बैठ गई। गुरुजी को लाल रंग सबसे अधिक पसंद है। 5 मिनट के लिए समाधि लगाना बच्चों के खेल जैसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैंने गुरुजी को इसे इतना सरल बनाने के लिए धन्यवाद किया। एक सप्ताह के लिए ऐसे ही चलने के पश्चात अगले हफ्ते गुरुजी ने मुझे समाधि का समय 5 से 10 मिनट बढ़ाने का आदेश दिया और उसके अगले सप्ताह उसे बढ़ाकर 15 मिनट के लिए ध्यान लगाने के लिए कहा। लंबे समय के लिए ध्यान लगाना कठिन होता जा रहा था। 1995 में जुलाई के महीने में जब गुरुजी अचानक जालंधर चले गए तो हम बहुत उदास हुए। उनका आदेश था कि जब तक वे स्वयं ना बुलाएं, दिल्ली की कोई संगत उनसे मिलने ना जाए। मैंने अगले 3-4 महीने तो उनसे मार्गदर्शन पाने की आस में उनसे विनती करने में गुजारे। आखिर कुछ महीनों के पश्चात गुरुजी ने संदेश भेजा कि हम उनके दर्शन के लिए जालंधर आए। हमारी खुशी का तो ठिकाना न था। जब हम उनके दर्शन के लिए जालंधर पहुंचे, तब गुरुजी ने हमें रिंपल ग्रेवाल आंटी की माताजी परमजीत चहल आंटी से मिलवाया, जिनके साथ हमारे रूहानी विचार एकदम जुड़ गए। उन्होंने हमें गुरुजी और उनके तौर तरीकों के बारे में बहुत कुछ सिखाया, खासकर कि गुरुजी की पूजा और उनसे प्रेम कैसे करना चाहिए। चहल आंटी जी बहुत ही प्यारी थी और उन्हें गुरुजी के दिव्य प्रकाश के दर्शन तब हुए थे जब गुरुजी केवल 19 वर्ष के थे। जब आंटी ने गुरुजी से पूछा था कि उनके कट्टर सिख होने के बावजूद क्या उनके लिए एक हिंदू गुरु उचित रहेगा, तब गुरुजी ने उन्हें अपने दिव्य नूर में ओम के दर्शन देकर उनकी दुविधा को दूर किया था। एक बार जब हम जालंधर मंदिर में गुरुजी की चरण सेवा कर रहे थे और आंटी गुरुजी के हाथों की मालिश करते हुए उनसे बातें कर रही थीं, तब गुरुजी ने उनसे कहा, आंटी इसनु पाठ सिखा जिस तरह मैं तेनु सिखाया है। आंटी इसको पाठ करना सिखा जिस तरह से मैंने तुझे सिखाया है। आंटी ने हमारी तरफ यूं मुड़कर देखा जैसे गुरुजी वहां थे ही नहीं और हमें समझाते हुए कहा, प्रार्थना की नींव मंत्र नहीं बल्कि भगवान के साथ संयोजकता होती है। जब तुम चित्त और शरीर को एकाग्र करके ध्यान के द्वारा बिंदु बनाने में समर्थ हो जाते हो तो मंत्र भी स्वयं ही आ जाता है। उनकी इस बात को गुरुजी सुनकर साथ साथ अपनी हामी देते रहे। इसके बाद आंटी ने समझाया कि मानसिक रूप से शारीरिक तौर पर नहीं, एक गद्दी लो, हमारे प्यारे गुरुजी के लिए सबसे खूबसूरत गद्दी।
मन से उस गद्दी को अपने हाथों से थापो और सारी सिलवटें हटाकर उसे समतल कर लो। गद्दी के आसपास एक एक करके फूल सजाओ और फिर ज्योत और अगरबत्ती जलाओ। गुरुजी को अगरबत्ती और धूप बहुत पसंद है। हाथों को एक दूजे पर धरकर बिल्कुल सीधे बैठकर गुरुजी को उस गद्दी पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित करो। अपने मन की आंखों से गुरुजी को चोला पहने चलकर आते देखो और कल्पना करो कि उन्होंने उस गद्दी पर आसन ग्रहण किया है। फिर अपने दिल की हर बात गुरुजी से कह दो और जब तुम संतुष्ट हो जाओ तब उन्हें हर आशीर्वाद के लिए शुक्राना करके उनसे आज्ञा लो। 20 मिनट पलक झपकते ही बीत जाएंगे और प्रार्थना भी पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। पूजा करना इतना आसान हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा रोम रोम जागृत होकर गुरुजी के साथ होगा और क्योंकि तुम सब कुछ अपने प्रिय गुरुजी के लिए करोगे इसलिए वह सर्वोत्तम होगा। तुम्हारे मन का हर अन्य विचार तप के लिए थम जाएगा। पूजा करते समय गद्दी के पास पानी से भरा एक गिलास रखो जो कि अगर चांदी का हो तो और भी अच्छा है क्योंकि वह बेहतरीन ऊर्जा चालक होता है। यही पानी फिर अमृत में परिवर्तित हो जाता है और तन मन और आत्मा के कल्याण के लिए पूजा के बाद इसे पी लेना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। अध्याय 3। हमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? रब रूठे तो गुरु मन्या, गुरु रूठे तो जिंदगी खत्म हो जाए। गुरुजी की कृपालु शरण में स्वीकृति मिलना वह सर्वोत्तम उपहार है जो भक्त अपने साथी संबंधियों के साथ बांट सकता है। हम अपने कई मित्रों को गुरु साहिब के पास लेकर गए लेकिन वे उन्हें यह कहकर भेज देते थे, मुझे कालीन दो, यहाँ कालीन की जरूरत है, या मुझे जमीन दो, मुझे मंदिर बनाना है। वे लोग कभी लौट कर नहीं आते थे। हम अपने एक और दोस्त को उसके बेटे और बेटी के साथ गुरुजी के पास लेकर गए। उनकी पत्नी उस समय शहर में नहीं थी इसलिए वे साथ नहीं आई। गुरुजी ने उन्हें अनुग्रहित होने का सौभाग्य बख्शा और वे गुरुजी के दर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी लौटी और हम पूरे परिवार को गुरुजी से मिलवाने के लिए लेकर गए। उस दिन महाशिवरात्रि थी और मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। वहां पर चलने फिरने की भी जगह नहीं थी और हमें थोड़ी देर में मालूम चला कि हमारे मित्र वहां से जा चुके थे। जब हमने अगले दिन उनसे पूछा अगर वे दोबारा चलना चाहते थे तो पत्नी ने कहा, नहीं, मेरा जीवन बिल्कुल बढ़िया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, केवल वे लोग गुरुजी के पास जाते हैं जिनकी जिंदगी में मुश्किलें होती हैं। हमारा वार्तालाप तो वहीं के वहीं खत्म हो गया। उसी शाम को गुरुजी ने हमसे हमारे दोस्त के परिवार के बारे में पूछा। हमने एहतियात से कह दिया कि वे नहीं आएंगे और उनसे हुए वार्तालाप के बारे में कुछ नहीं बोला। गुरुजी तो सर्वज्ञानी हैं और उन्होंने उसी क्षण कहा, उसे पत्नी को समझ नहीं आता कि जीवन में गुरु क्यों जरूरी होता है। फिर गुरुजी ने बहुत ही धैर्य के साथ समझाया, जब हम ओम कहते हैं उसमें अ उ म बिंदु और नाद होता है। अ उ म और बिंदु के स्वरों का उच्चारण तो हम सब कर सकते हैं किंतु नाद अंतकरण का स्वर है और केवल कोई उन्नत आध्यात्मिक पुरुष ही इसका उच्चारण करने में समर्थ होता है। गुरुजी ने कहा, जब भक्त किसी मंत्र को किसी निर्धारित संख्या में बार बार दोहराता है तो शक्ति का आवाहन होता है और यही शक्ति हमारी प्रार्थना और इच्छाओं को अनुग्रहित करती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध और उचित हो, वरना वह शक्ति का आवाहन करने में निष्फल हो जाएगा। हमारे सब मंत्रों में ओम है इसलिए हमारी प्रार्थना निपुण नहीं होती और इस कारण वह अस्वीकरणीय हो जाती है। गुरु साहिब अपने भक्तों के अशुद्ध मंत्र उच्चारण को शुद्ध बनाकर शक्ति द्वारा स्वीकार कराने में हमारी मदद करते हैं। उन्होंने कहा, शक्ति का अभिमंत्रण करने के लिए मंत्र का गणित के समीकार की भांति एकदम सही होना अनिवार्य है, इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए गुरुजी का हमेशा यह कहना था कि सारा पूजा पाठ खुद ही करना चाहिए, ना कि किसी पंडित से करवाना चाहिए, क्योंकि गुरु होते हुए वे अपने भक्तों के लिए जिम्मेदार हैं, उस पंडित के लिए नहीं जो हमारे लिए पूजा पाठ कर रहा है। कोई भी हवन या जाप बहुत कठिन नहीं होता। एक बार गुरुजी ने मुझे उस छोटे काले शिवलिंग की धारा पूजा करने के लिए मंदिर भेजा, जो अब मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट गणेश जी की मूर्ति के साथ स्थापित है। उन दिनों में वह लिंग गुरुजी के झूले के सामने वाले पथ पर स्थित था। ग्रीष्म ऋतु के मध्य में सिर्फ एक सूती दुपट्टे से सिर को ढककर बिना किसी पूजा की विधि सिखाने वाले के साथ मुझे फर्श पर सिर्फ एक चटाई पर पाठ करने बिठाया गया। मेरा सारा पूजा पाठ गुरुजी को अर्पित था। राम अवतार और छोटे लाल छोटा माली की मदद से मुझे पूजा की पूर्ति में 2 दिन लगे। उनकी पत्नियों को मेरे लिए हल्का सात्विक भोजन बनाने का आदेश दिया गया था और रोमा आंटी के अतिरिक्त और किसी संगत को वहां पर आने की अनुमति नहीं थी। वह क्रिया थकाऊ तो थी अपितु साध्य थी। मैं कभी समझ ना पाई कि सिर्फ मुझे वह पूजा करने की आज्ञा क्यों हुई, लेकिन यह मेरे बारे में नहीं था। यह इसलिए हुआ ताकि आज मैं एक साधारण गृहिणी जिसे सिर्फ मामूली हिंदी आती है यह लिखकर कह सके कि कोई भी पूजा कठिन नहीं है और गुरु साहिब के आशीर्वाद से पूजा स्वयं ही करनी चाहिए। गुरु जी अपनी दिव्य दृष्टि से सारी योजना कितनी पहले ही कर लेते थे। आज मेरा मन स्वयं को उनके कहे हुए वचनों के एक बैंक के समान महसूस करता है। वे वचन जिनका अनुसरण करना और दोबारा जिक्र करना आवश्यक है। अध्याय 4। मंत्र प्रभावशाली होते हैं। हर बार जब आप धार्मिक किताब पढ़ते हैं, माला जपते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो वह एक आध्यात्मिक स्तर से अगले स्तर पर पहुंचने जैसा होता है। गुरुजी ने हमें समझाया कि भक्ति की किताब को हर बार पढ़ने से पढ़ने वाले का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, जिसका निर्णय भगवान लेते हैं, और गुरुजी का कहना था कि यह ऐसा उपहार है जिसमें भरी हुई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें स्वयं को अनुकूल बनाना आवश्यक है। गुरुजी कहते थे, मुझसे सब हैं और सब मुझ में हैं। तात्पर्य यह कि उनके भक्त सदा सुरक्षित हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी सुंदर पत्नी के साथ हाल ही में संगत में आया। एक अवसर पर वह पागल दीवाने के जैसे हंसने लगा और मंदिर के मुख्य दरबार के फर्श पर लौटने लगा। मेरे बच्चे बहुत डर गए और नताशा तो शोना योगराज की गोद में जाकर बैठ गई। उस आदमी को शांत और स्थिर होने में तकरीबन 10 मिनट लग गए और संगत हैरान और परेशान थी। गुरुजी बिना कोई परस्पर प्रतिक्रिया किए शांतिपूर्वक बैठे रहे। उस आदमी के शांत होने तक गुरुजी बस अपनी गद्दी पर बैठकर अपने सिर पर अपना हाथ गोल गोल फेरते रहे। काफी देर के बाद जब हमें गुरु साहिब से पूछने का मौका मिला कि उस व्यक्ति को क्या तकलीफ थी, क्या वह पगला गया था या जिंदगी से बहुत परेशान था, तब गुरुजी ने हमें बताया कि उस आदमी को किसी ने ऐसा प्रभावशाली मंत्र दिया था जिससे वह शिवजी को अपने वश में कर सके। उस आदमी का शरीर मंत्र की ऊर्जा को समाने के लिए काबिल नहीं था, जिसके कारणवश उस पर उस ऊर्जा का बहुत कठोर असर हुआ। गुरुजी ने उस आदमी को इस हानिकारक रास्ते को छोड़कर अपनी सुंदर पत्नी के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। बदकिस्मती से, क्योंकि वह आदमी दर्शन के लिए केवल 2 बार आया, उसने गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं किया। उसी दिन कुछ देर बाद जब केवल हम कुछ ही संगत रहती थी, गुरुजी ने कहा, भगवान को पूजना चाहिए, ना कि उन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। हर आदमी गुरु बनना चाहता है, लेकिन पहले उसका खरा शागिर्द बनना जरूरी है। कोई किंतु परंतु नहीं और कोई अहंकार नहीं। अपनी गुरुयाई आरंभ करने से पूर्व गुरुजी ने 1.5 साल के लिए मुंबई में एक गुस्सैल मिजाज औरत की सेवा की थी। यह उन्होंने अपने भीतर बसे अहंकार को जड़ से खत्म करने के लिए किया था। गुरु जी अपनी सारी संगत को जोड़ते हैं। हमारे परिवार के हर सदस्य के आने के लिए अलग अलग दिन नियुक्त किए गए थे। गुरु साहिब हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हमारे बच्चे शोना के साथ बैठें। जब भी मेरी बेटियों को किसी की जरूरत होती थी, वह हमेशा शोना को अपने साथ पाती थी। आज भी शोना आयशा का ध्यान रखती है, एक ऐसा नाता जो गुरुजी ने उम्र भर के लिए बना दिया। अध्याय 5, प्रार्थना का समय। तुम्हें मुझसे इतना प्रेम होना चाहिए कि जब तुम लिपस्टिक भी लगा रही हो तब भी मैं तुम्हें दर्पण में दिखूं। इतने सारे काम काज होने की वजह से सभी की जिंदगी में तनाव है। हमारी इतनी जिम्मेदारियां होने के कारणवश कभी कभी तो केवल गुसल खाने या शौचालय में ही खाली समय मिलता है, जो कि इतनी शर्म की बात है। हमारे प्रिय गुरुजी ने बहुत लाड प्यार से कहा, मैं जानता हूं कि मेरा शागिर्द मुझे कब और कहां याद करता है, और स्थान चाहे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मुझे पूर्णतया पवित्रता से याद करती है। यह थी हमारे गुरुजी महाराज की आध्यात्मिक गहराई और उनकी अपने भक्तों की अज्ञानता की स्वीकृति। फिर और समझाते हुए उन्होंने कहा, सुबह के 3 बजे का समय प्रार्थना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हें नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मुंह हाथ धोकर कुल्ला करो, अपने पलंग के साथ एक चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाओ। अपने हाथों से चटाई के आसपास जमीन पर एक काल्पनिक गोल दायरा बनाओ और उसमें केवल स्वयं को आलोकित करने के लिए मेरा आवाहन करो। प्रातःकाल के 3 बजे अगर तुम 5 मिनट के लिए भी बैठोगे तो वह उस दिन की सर्वोत्तम और सर्वशक्तिशाली प्रार्थना होगी। जैसे जैसे दिन बीतता है प्रार्थना का मोल कम होता जाता है। 3 बजे के समय का मूल्य हीरों के समान है, 4 बजे का समय सोने के समान और 5 बजे का समय चांदी के समान होता है। मेजर जनरल मोहन सिंह, जिन्हें गुरुजी और सारी संगत मामा जी कहकर पुकारते थे, ने हमें समझाया, अगर आप गुरुजी को हर समय अपने साथ चाहते हो तो उनसे प्रार्थना कीजिए, मन से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कीजिए, फिर वह सदा के लिए आपके साथ होंगे। अतः जैसे गुरुजी ने कहा, दिन हो या रात मैनू याद करो। अध्याय 6, प्रार्थना। हर पल तू ही तू ही। गुरुजी हम सबके लिए प्रार्थना करते थे। कभी कभी तो संगत के रोग स्वयं पर लेने के कारण उनका शरीर प्रतिक्रिया दिखाता था और उन्हें खून की उल्टी, घाव या सिर में दर्द हो जाता था। कैसी विडंबना है यह कि जिसके पास सृष्टि की सारी शक्तियां हों, वह अपने सिवाय बाकी हर एक के लिए कुछ भी करने में समर्थ है। उनका कहना था, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, मेरी संगत को मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। घर विच घी दी जोत हमेशा जलनी चाहिए। गुरुजी कहते थे कि घर में घी की ज्योत हर समय या फिर कम से कम दिन में 2 बार जरूर जलानी चाहिए। उन्होंने समझाया कि ज्योत को घी का होना चाहिए, क्योंकि घी की खुशबू बहुत शुभ होती है। गुरु साहिब इस बात पर जोर देते थे कि भक्त को हर सुबह सकुशलता से बीती रात का धन्यवाद करने और दिन के मंगल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और संध्या काल में ईश्वर की कृपा से दिन के अच्छे से बीत जाने के लिए और घर लौटने का धन्यवाद देते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात शांत मंगल रात्रि के लिए विनती करें। भोजन ग्रहण करने से पहले धरती माँ का वंदन करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी हर जरूरत पूरी करती हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं और जिस धरा पर हम रहते हैं। गुरुजी स्वयं तो बहुत परिमित भोजन करते थे। एक बार जब उनसे एक और रोटी खाने का आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा, मैं त्वाड़ी खुशी वास्ते खांदा। उन्होंने समझाया, महापुरुषों को खाने की जरूरत नहीं होती। हर वह भक्त जो प्रार्थना करके खाता है, उसका पहला निवाला मुझ तक पहुंचता है। कुछ समय पश्चात हम शिमला के पास एक संत से मिले जो केवल एक पत्ता या ज्यादा से ज्यादा एक गाजर ही खाते थे, बिल्कुल जैसा गुरुजी ने कहा था। हालांकि मेरे मन में एक ख्याल आता है कि भक्तों के इतने सारे निवालों को भोग लगाकर गुरुजी मोटे कैसे नहीं हुए। सिर्फ उनके पेट के आसपास थोड़ा बहुत वजन था। वे प्रार्थनाएं जो गुरुजी ने बताई, बीज मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, यह अंश संगत ने गुरुजी के सम्मान में मंत्र में जोड़ा। प्रार्थना: थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भो होए बजो भगवान, सात संगत मिलकीनो दान, सरन परे प्रब अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रब स्वामी। गुरुजी कहते थे कि उनके भक्तों को सुखमणि साहिब का पाठ सुनना या पढ़ना चाहिए, हर रोज शिव पुराण पढ़नी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहिए। गुरुजी स्वयं तो बहुत परिमित भोजन करते थे। एक बार जब उनसे एक और रोटी खाने का आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा, मैं त्वाड़ी खुशी वास्ते खांदा। उन्होंने समझाया, महापुरुषों को खाने की जरूरत नहीं होती। हर वह भक्त जो प्रार्थना करके खाता है, उसका पहला निवाला मुझ तक पहुंचता है। कुछ समय पश्चात हम शिमला के पास एक संत से मिले जो केवल एक पत्ता या ज्यादा से ज्यादा एक गाजर ही खाते थे, बिल्कुल जैसा गुरुजी ने कहा था। हालांकि मेरे मन में एक ख्याल आता है कि भक्तों के इतने सारे निवालों को भोग लगाकर गुरुजी मोटे कैसे नहीं हुए। सिर्फ उनके पेट के आसपास थोड़ा बहुत वजन था। वे प्रार्थनाएं जो गुरुजी ने बताई, बीज मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, यह अंश संगत ने गुरुजी के सम्मान में मंत्र में जोड़ा। प्रार्थना: थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जान की पैज रखी करतारे, बादशाह सह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भो होए भजो भगवन, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओठ पकरी प्रभ स्वामी। गुरुजी कहते थे कि उनके भक्तों को सुखमणि साहिब का पाठ सुनना या पढ़ना चाहिए, हर रोज शिव पुराण पढ़नी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहिए। जब तक मैं ना कहूं तब तक कभी भी महामृत्युंजय मंत्र नहीं करना, इसके लिए उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। इसी तरह गुरुजी हमारी प्रार्थना की गहराई बढ़वाते गए ताकि समय के साथ साथ हमारा मन शरीर और हमारी आत्मा गहरे ध्यान की अवस्था स्वीकार सके। अगर गुरुजी को कोई खास तरह का पूजा पाठ उचित या जरूरी लगता है तो उसका संकेत आपको खुद ब खुद चारों दिशाओं से प्राप्त होगा। आपके मन में कोई भी शंका ना रह जाए इसलिए उसके चार पांच संकेत मिलेंगे। गुरुजी हमेशा कहते थे, गुप्त पाठ और गुप्त दान करो, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे पति को भी तुम्हारे किए पाठ या दान के बारे में मालूम नहीं चलना चाहिए। इतना गुप्त कि तुम्हारे बाएं हाथ को भी यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे दाएं हाथ ने दान में क्या दिया है। उन्होंने कहा कि कलयुग में हमारी रसना अग्नि की भांति सारे आशीर्वाद का भक्षण कर लेती है। जब तुम किसी दूसरे इंसान को अपनी की हुई प्रार्थना या अपने दिए हुए दान के विषय में बताते हो तब तुम्हें अहंकार हो जाता है और तुम्हारा किया पाठ और दान निष्फल हो जाता है। गुरुजी का कहना था कि माला जपने से इंसान का अहम बढ़ जाता है, इसलिए वे माला जपने से मना करते थे। वे कहते थे कि यदि माला बिना गिने जपी जाए तो वह स्वीकारने योग्य होती है, क्योंकि गिनती करना तो मानव आवश्यकता है। गुरुजी हम भक्तों से प्रार्थना में गहरी श्रद्धा और लगन चाहते हैं।
वे कहते थे, तुसी किताबां सिर्फ पढ़दे हो, पर अगर तुसी ध्यान नाल पढ़ो तो उन्ना दे रास खुलन। यानी कि तुम केवल नाम मात्र के लिए किताबें और ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन अगर तुम आदरपूर्वक पढ़ोगे तो ये ग्रंथ तुम्हें अनेक रहस्यों से परिचित कराएंगे।
ध्यान प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। केवल ध्यान द्वारा ही तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन हो सकते हैं। बाकी सब प्रकार की पूजा, जैसे कि मंदिर, किताबें, माला, ये सब ध्यान तक ले जाने की सीढ़ियां हैं। एक बार ध्यान लगाना आ जाए, फिर इनमें से किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम समर्पण की अवस्था तक पहुंचोगे, तुम्हारे लिए नियुक्त मंत्र तुम्हारे अस्तित्व में समाएगा। आपके मन में कोई भी शंका ना रह जाए, इसलिए उसके 4-5 संकेत मिलेंगे। गुरुजी हमेशा कहते थे, गुप्त पाठ और गुप्त दान करो। तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे पति को भी तुम्हारे किए पाठ या दान के बारे में मालूम नहीं चलना चाहिए। इतना गुप्त कि तुम्हारे बाएं हाथ को भी यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे दाएं हाथ ने दान में क्या दिया है। उन्होंने कहा कि कलयुग में हमारी रसना अग्नि की भांति सारे आशीर्वाद का भक्षण कर लेती है। जब तुम किसी दूसरे इंसान को अपनी की हुई प्रार्थना या अपने दिए हुए दान के विषय में बताते हो, तब तुम्हें अहंकार हो जाता है और तुम्हारा किया पाठ और दान निष्फल हो जाता है। गुरुजी का कहना था कि माला जपने से इंसान का अहम बढ़ जाता है, इसलिए वे माला जपने से मना करते थे। वे कहते थे कि यदि माला बिना गिने जपी जाए तो वह स्वीकारने योग्य होती है, क्योंकि गिनती करना तो मानव आवश्यकता है। गुरुजी हम भक्तों से प्रार्थना में गहरी श्रद्धा और लगन चाहते हैं।
वे कहते थे, तुसी किताबां सिर्फ पढ़दे हो, पर अगर तुसी ध्यान नाल पढ़ो तो उन्ना दे रास खुलन। यानी कि तुम केवल नाम मात्र के लिए किताबें और ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन अगर तुम आदरपूर्वक पढ़ोगे तो ये ग्रंथ तुम्हें अनेक रहस्यों से परिचित कराएंगे।
ध्यान प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। केवल ध्यान द्वारा ही तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन हो सकते हैं। बाकी सब प्रकार की पूजा, जैसे कि मंदिर, किताबें, माला, ये सब ध्यान तक ले जाने की सीढ़ियां हैं। एक बार ध्यान लगाना आ जाए, फिर इनमें से किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम समर्पण की अवस्था तक पहुंचोगे, तुम्हारे लिए नियुक्त मंत्र तुम्हारे अस्तित्व में समाएगा।
उन्होंने कहा, शरीर को मन के वश में करने से ही ध्यान लगाना मुमकिन होता है, और हम सबका तो मन शरीर के वश में है। गुरुजी कहते थे, मेरे अंदर दी लाइट देख, मेरे अंदर जा, जो मैं समझ ना पाती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने उनसे अरदास की, आपके शब्द एक कठिन पहेली हैं और मेरा मन एक बच्चे के मन जैसा है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि जैसा आप चाहें मैं वैसा करूं। वहां बैठे बैठे मैंने भाव समाधि में स्वयं को एक पंख के रूप में देखा, जो गुरुजी के सौम्य सुनहरे नूरानी प्रकाश में कीर्तन की ध्वनि के संग उनके शरीर में तैर रहा है। हमें सिखाया गया है कि हमें श्वेत प्रकाश की प्राप्ति करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी हंसकर कहते थे, पहले हरे और फिर लाल रंग की चमकती दमकती रोशनी होती है। उन्होंने समझाया कि यह बिखरा हुआ प्रकाश नहीं, बल्कि सैकड़ों फ्लैश बल्ब की भांति रोशनी के रूप में दिखता है। जिसके भी शनि में दोष होता था, उसे चौर साहिब का दान करने गुरुद्वारे भेजा जाता था और उससे चौर साहिब की सेवा कराई जाती थी। इसके पश्चात उन्हें वाक सुनने के लिए कहा जाता था, ताकि उन्हें मालूम चले कि उनकी सेवा स्वीकार हुई या नहीं। गुरुजी अपनी संगत को पानी के माध्यम से ध्यान लगाना सिखाना चाहते थे। उनका आदेश था कि प्लॉट नंबर 11 को कुवैत से लाए गए फवारों द्वारा सजाकर एक बाग बनाया जाए, और जो छोटा शिवलिंग बड़े मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के साथ स्थित है, उसे उस बाग के बिल्कुल बीच में केंद्रित किया जाए। संगत के प्रत्येक सदस्य को कथित रूप से मौन बैठकर जल की ध्वनि पर ध्यान लगाकर समाधि लगाने का आदेश था।
अध्याय 7। उपाय। रूहानी सरनामा, नाम, जन्मतिथि, जन्मस्थान,
पिता का नाम, माता का नाम। रूहानी सरनामा को गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे कहने के पश्चात ही कोई भी उपाय करना चाहिए। बुखार का इलाज। पतली डंठल के साथ 5 साबुत हरी मिर्चें लो। एक बार में एक मिर्च को तर्जनी उंगली और मध्य उंगली के बीच में रखकर आधे घंटे के लिए दबाओ। इसके लिए स्त्रियों को बाएं हाथ का और पुरुषों को दाएं हाथ का प्रयोग करना है। हाथ को गीले रुमाल से बांध लो और हर आधे घंटे के बाद उस मिर्ची को निकालकर अगली मिर्ची उसी प्रकार से रख लो। जब 5 मिर्चें इस्तेमाल हो जाएं, तो उनके दूषित हो जाने के कारण उन्हें मिट्टी में गाड़ दो। यह उपाय केवल सच्चे भक्त के लिए सार्थक है, उनकी भक्ति और गुरुजी के संग सीधे संपर्क के कारण। मामूली और उग्र काले जादू का उपाय। एक मुट्ठी कच्ची पीली मूंग की धुली दाल, सिर से लेकर पैर तक 7 बार बिना छुए उस जन के सामने घड़ी की सुई के अनुसार घुमाओ और फिर उस दाल को ऐसी सड़क पर फेंक दो जहां काफी गाड़ियां और अन्य वाहन आते जाते हों, ताकि दाल के वे दाने कुचल जाने से चूर चूर हो जाएं। नजर। यह उपाय भी दाल के जैसे ही पानी के बर्तन के साथ करना है। सिर से पैर तक 7 बार बिना छुए उस जन के सामने घड़ी की सुई के अनुसार घुमाकर उसे शौचालय में फेंक दो। गुरुजी महाराज ने कहा था कि एक समय आएगा जब हमें त्वचा के रोग होंगे, जब लाखों की तादाद में लोग मरेंगे और लाशों को जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होगी। त्वचा का रोग अंदरूनी और ऊपरी दोनों तरह का हो सकता है। इलाज के लिए सुबह सर्वप्रथम एक नीम का पत्ता और 1 चम्मच नमकीन खीर खानी चाहिए। सुखमनी साहिब पाठ मुश्किल समय को गुजारने के लिए अनिवार्य है। गुरु जी महाराज इस बात को बहुत महत्व देते थे कि परिवार के सभी सदस्यों को यह पाठ करना चाहिए। अध्याय 8। मांगो मत, मंगो नहीं मन्नो। कुछ मांगो नहीं, मुझे तुम्हें सब प्रदान करने दो। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे मांगने अनुसार दूंगा नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए। मुझ पर बिना शर्त के पूर्ण विश्वास करो। एक बार संगत का एक सदस्य अस्पताल में भर्ती हुआ। उसे खून देने वालों की जरूरत थी और पहले कुछ दिन तो आंटी, उनकी पत्नी, आसानी से खून देने के लिए लोग ढूंढ पाईं, लेकिन एक दिन उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने गुरुजी से विनती की, कृपा करके कोई खून दान करने वाला भेजिए। जब वह अस्पताल के बाहर खड़ी होकर रो रही थी, तब वहां से 2 दूध वाले गुजरे। आंटी के रोने का कारण जानकर वे दोनों अपना खून देने के लिए राजी हो गए। उस शाम जब हम गुरुजी के साथ बैठे हुए थे, तो आंटी ने गुरुजी के पास आकर उनका बहुत शुक्राना किया। अगले ही दिन उनके पति की मृत्यु हो गई। हम बहुत हैरान हुए क्योंकि अंकल को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। तब गुरुजी ने हमें समझाया, गुरुओं को लो मंगदे नहीं मंदे हैं। गुरुजी ने कहा, मैं एक निश्चित समय पर भक्त को आशीर्वाद देता हूं और अगर उस समय वह भक्त मुझसे कुछ मांग रहा होता है तो फिर मुझे उसकी वह मांग पूरी करनी पड़ती है। अगर उस समय आंटी ने खून देने वालों की जगह अपने पति के लिए जीवनदान मांगा होता तो बात अलग थी। तुम सबको इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्योंकि तुम अपना भविष्य नहीं जानते। इसलिए तुम कैसे कुछ भी मांग सकते हो? जब तुम मांगते हो तो तुम्हारी झोली इतनी छोटी प्रतीत होती है कि मेरे थोड़े से आशीर्वाद के लिए भी कम पड़ती है। लेकिन अगर तुम सब मुझ पर छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें तब तक अनुग्रहित करता हूं जब तक तुम मेरी कृपा और दिव्य ज्योति में विलीन नहीं हो जाते। लोग दिन में हर पल ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं, जिसमें से अधिकतर मांगे ईश्वर पूरी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान कुछ अनमोल ले लेते हैं, तुम सब उससे नाराज होकर उसका नाम लेना छोड़ देते हो। फिर उन्होंने कहा, मुझे सब में याद करोगे तो मुझे सब में पाओगे, सब में मैं और मेरे में सब। अध्याय 9। प्रार्थनाएं हमारे शरीर पर असर करती हैं। गुरु जी के शरीर की कुदरती खुशबू बिल्कुल अनोखी थी, जो कि उन्होंने समझाया तप के हर स्तर पर बदलती है, ऐसा तप जो कई वर्षों से चल रहा है। उन्होंने समझाया कि हर किसी के शरीर की एक तरह की प्राकृतिक सुगंध होती है, जो अधिक प्रार्थना करने पर विमोचित होती है। मेरी संगत को अपने शरीर से प्राकृतिक सुगंध के निर्मुक्त होने के लिए कभी भी मेरे जितना कठिन तप नहीं करना पड़ेगा, वह उन्हें मेरी ओर से उपहार होगा। गुरुजी के दसों द्वार बहुत सुगंधित थे। गुरुजी के सिर के पिछले भाग में सूर्य था, उनकी बाई आंख के पास मोर था और उनके माथे पर दाई आंख के पास शेषनाग था। उनके चेहरे पर दोनों भौहों के बीच में एक शिवलिंग का चिन्ह था, जो अधिकतर संगत ने देखा हुआ है। कभी कभी तो संगत को उस लिंग के एक विराट रूप लेकर उनके सीस तक पहुंचने के दर्शन होते थे। गुरुजी के अनेक ओम उनके पूरे शरीर को सुसज्जित करते थे, लेकिन उन सब में से जो गुरुजी को सबसे ज्यादा पसंद था, वह वो कंचन ओम था, जहां से उनकी शक्ति का प्रभाव होता था। उनके चरण पर संतों के प्रतीक पद्म थे और ओम और ओमकार भी। गुरुजी का कहना था कि तुम्हें इसी प्रकार से प्रार्थना के माध्यम से अपने शरीर का श्रृंगार करना चाहिए। चहल आंटी जी बताया करती थीं कि किस तरह से पाठ के पश्चात उनकी उंगलियों के पोर सूज जाते थे और उनमें से एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता था। फिर कुछ देर के बाद वह सोजन खुद बखुद कम हो जाती थी। उस समय मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर एक दिन गुरु साहिब ने मुझे अपने हाथ दबाने को कहा, खासकर उनकी उंगलियों के पोर, क्योंकि वे पाठ के बाद सूज गए थे। उस दिन से मैंने फैसला किया कि आंटी जी की किसी भी बात पर मैं कभी संशय नहीं करूंगी, क्योंकि हर बार गुरुजी मुझे दिखाते थे कि वह कितनी पुण्यात्मा थी। एक बार गुरुजी ने मुझे एक दिन में ही इतनी पूजा करने का आदेश दिया कि कुछ समय बीतने पर मेरा शरीर और प्रार्थना को सहन न कर सका। कोई धार्मिक ग्रंथ खोलने पर या कीर्तन सुनने से मुझे उल्टियां आने लगी। यह भी बहुत असमंजस वाली बात थी। फिर गुरुजी ने मेरी सारी पूजाएं रोक दी, क्योंकि मेरा शरीर पूजा के साथ जागृत होने वाली ऊर्जा के साथ समंजित ना हो पा रहा था। कोई पढ़ाई या कीर्तन नहीं, सिर्फ फिल्मी गाने और पंजाबी गाने सुन और तू उन्हीं में मुझे पाएगी। आश्चर्य की बात यह थी कि मुझे उन्हीं फिल्मी गीतों में एक नए अर्थ का एहसास होने लगा, और इस बार ना कोई मंत्र और ना किसी धार्मिक ग्रंथ की जरूरत, ना ही कीर्तन की। आंखें खुली रखते हुए साधना अति उत्तम। कई साल पहले एक बार गुरुजी ने हमें चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की ऊर्जा के संचालन का मार्ग समझाया। उन्होंने कहा कि चंद्र नाड़ी बाईं ओर से और सूर्य नाड़ी दाईं ओर से उत्पन्न होकर अंत में मध्य भाग में आकर पवित्र शक्ति में विलीन हो जाती है। यह गुरुजी ने हमें उस समय दिखाया जब हम उनसे मिले ही थे, और इसलिए हमें इसके बारे में कुछ याद ही नहीं है। शायद अभी वक्त नहीं आया था। जब गुरुजी की मेहर से नाड़ियों में प्रवाह होने लगता है तो वे इतनी ऊर्जा प्रदान करती हैं कि शरीर को इस ऊर्जा के अनुकूल होने में थोड़ा वक्त लगता है। उन्होंने समझाया, वह एक पतली सी बिजली की तार की भांति कभी बीच में से ओझल होकर तो कभी चुभकर हिलती है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। गुरुजी कहते थे, चलना व्यायाम का सर्वोत्तम तरीका है, और औरतों को व्यायाम शाला में व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जननांग पर अनुचित असर पड़ता है। उन्होंने समझाया, पाठ करने के बाद एकदम जल्दी से नहीं उठो, बल्कि अपने घुटनों को मोड़कर उनका आलिंगन करो ताकि रक्त संचार शुरू हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शरीर के लिए मालिश बहुत जरूरी है और कम से कम हफ्ते में एक बार मालिश अवश्य करवानी चाहिए। गुरुजी कहते थे, तुम्हें साबुन के बजाय प्राकृतिक पदार्थों से स्नान करना चाहिए। कभी किसी को देखो
जो गहरा ध्यान लगाकर प्रार्थना करके उठा हो, उसके चेहरे पर तेज होगा और वह इतना सुखद नजर आएगा। शरीर पर प्रार्थना के प्रभाव के बारे में इससे सरल शब्दों में और कैसे कहा जा सकता है? अध्याय 10, गुरुजी महाराज के दिए हुए उपहार। हो सकता है कि तुम्हारे पाठ के बाद मैं तुम्हें मिश्री का एक टुकड़ा दूं, या तुम्हारे गिलास में भरे हुए जल में अपनी दिव्य खुशबू भर दूं, और कभी छोटे छोटे फूल या मेरी रूहानी सुगंध, ये सब तुम्हारे लिए मेरी ओर से उपहार होते हैं और इन्हें आशीर्वाद से कम नहीं समझना। ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने मुझे मेरा बायां हाथ खोलने के लिए कहा। वह थोड़ा सा गीला था। मैंने सोचा, हथेलियों पर पसीना। गुरुजी ने मुझे उसे सूंघने और चखने के लिए कहा। वह गुरुजी की खुशबू वाला अमृत था। मेरे पास अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। गुरुजी अपनी संगत के लिए वायुमंडल से सचखंड का प्रसाद प्रस्तुत कर देते थे। वह प्रसाद अलग अलग समय पर भिन्न प्रकार का होता था, जैसे एक बड़े से लड्डू जितनी मिठाई, जिसका वर्णन करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। वह गुरुजी के एक हाथ में तो पूरा आ जाता था, लेकिन हमारे दोनों हाथों के लिए भी ज्यादा होता था। प्रसाद उत्पन्न करने के पश्चात गुरु साहिब कुछ पल के लिए आंखें बंद करके पाठ करते थे, फिर स्वयं अपने हाथों से वे संगत को प्रसाद बांटते थे। एस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश में गुरुजी स्टील के ग्लास में अमृत द्वारा अपनी संगत को आशीर्वाद देते थे। मैं उनके तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी, इसलिए मुझे अमृत की सुगंध ने आश्चर्यचकित किया। एक दिन साहिब ने मुझसे कहा, जा तू भी पानी दी ट्रे ले आ। मैं रसोई में गई, 25 स्टील के गिलासों को नल के जल से भरा और गुरुजी के पास ले गई। साहिब ने एक बार में एक गिलास उठाकर अपनी माला से धन्य किया और फिर संगत में से एक एक जन को दिया। उन्होंने बचे हुए 11 गिलास मुझे दिए, जो कि मुझे मेरे पिताजी, माँ और अन्य भाई बंधु की ओर से पीने थे। हर गिलास के अमृत की सुगंध की तीव्रता भिन्न थी। कई गिलासों में खुशबू ना के बराबर थी और कई गिलासों में इतनी अधिक कि एक बार में अमृत पान करना असंभव था। गुरु साहिब के आदेश पर चहल आंटी जी ने हमें गुरुजी के समक्ष अपने एक दिव्य अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आज जब मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने बैठी, मैंने ऑर्गेन्जा के रूमाल के दूसरी तरफ ग्रंथ के पन्नों पर गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप देखा। उत्तेजित होकर मैंने पूछा, आंटी जी, जब आपने रुमाल उठाया फिर क्या हुआ? साहिब थे या ओझल हो गए? उन्होंने उदासी भरी आंखों से मुझे देखा और कहा, बैम्बी जी, मैं रुमाला कैसे उठा सकती थी? अगर वे मुझे अपने पूर्ण दर्शन देना चाहते तो वे रुमाले के ऊपर दर्शन देते, लेकिन वे मुझे आंशिक दर्शन देना चाहते थे, इसलिए मैं उनकी इच्छा के खिलाफ कैसे जा सकती थी? फिर उन्होंने हमारे गुरु साहिब की ओर देखा और वे बहुत रोईं, और गुरुजी ने आंटी को ऐसे दिलासा दिया जैसे कि वे बच्ची हों। इस समय उम्र के हिसाब से आंटी काफी बड़ी थीं। गुरुजी, तुसी महान, त्वाडे भगत बेमिसाल। गुरुजी, आप महान हैं, आपके भगत बेमिसाल। अध्याय 11, भोजन। जब गुरुजी से पूछा गया कि ध्यान के दौरान वे कैसा भोजन लेते थे, उन्होंने कहा कि आहार हल्का, सादा और अल्प मात्रा में होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे दोपहर के भोजन में मूंग दाल, 2 रोटी और दही खाने को कहा। यह सोचकर कि इस प्रकार का आहार मांसाहारी खाने के मुकाबले में बहुत नीरस होगा, मैंने गुरुजी से पूछा, अगर मैं साथ में अचार खा सकती हूँ? तो उन्होंने इसके लिए मुझे आज्ञा दे दी। एक वर्ष के बाद मैंने गुरुजी से कहा, अब मैं यह खाना और नहीं खा सकती, और वे हंसकर बोले, छड परे, छोड़ दे। शरीर के लिए दूध और पानी बहुत आवश्यक है। गुरुजी कहते थे कि दूध ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। उन्हें पंजाब का दूध और पानी बहुत पसंद था, क्योंकि वह सबसे शुद्ध होता है।
वास्तव में उन्होंने हमें कई बार बताया कि दिल्ली का पानी और दूध सेहत के लिए हानिकारक हैं। जब गुरुजी महाराज पहले पहले दिल्ली आए और उन्होंने ग्रेटर कैलाश के एस ब्लॉक में संगत की, उन दिनों वे हफ्ते में चार दिन सोमवार से गुरुवार तरल आहार लेते थे। उन्होंने समझाया कि वे तब ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी किसी भी संगत को कभी भी व्रत रखने की जरूरत न पड़े। संगत केवल महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखती थी। जब महासमाधि से पहले वाली महाशिवरात्रि आई, तब गुरुजी ने राम अवतार को फोन करके आदेश दिया कि जो भी संगत मंदिर में है वे सब लंगर खाकर व्रत को तोड़ दें। शुरुआत में जब हम गुरुजी से मिले, तब मैंने उनसे पूछा, आप हमें मांसाहारी भोजन क्यों खाने देते हैं? उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मांसाहारी खाना छोड़ दो तो क्या तुम उसे खाना छोड़ दोगे? मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। उन्होंने कहा, कलयुग में सर्वप्रथम गुरु को अपनी गुरुयाई साबित करनी पड़ती है। जब मैं स्वयं को तुम्हारे सामने साबित करूंगा, तब तुम्हें मेरी बात सुनना सार्थक लगेगा। इसलिए जब मैं खुद को तुम्हारे समक्ष साबित कर लूंगा और जब सही वक्त आएगा, तब मैं तुम्हारा मांसाहारी खाना बंद कर दूंगा। आज ही छुट्टी के लिए बैंकॉक जाओ, यह हुक्म मिला, जाओ हनीमून मनाओ। तब हमारी शादी को 20 साल हो चुके थे। सैटी ने कहा कि हम नहीं जा सकते क्योंकि उनके पासपोर्ट में कोई भी खाली पन्ना नहीं बचा। गुरुजी ने उन्हें कहा कि एक पन्ना है और सचमुच एक ही पन्ना बचा हुआ था। हुक्म दोपहर के 2:30 बजे मिला और उसी रात को 9 बजे हमने बैंकॉक के लिए उड़ान भरी। विमान की यात्रा के दौरान और अगले 2 दिन जब भी मैं मांसाहारी खाने का एक टुकड़ा भी मुंह में डालती तो मुझे उपकाई आती और मेरे मन में आया, लानत है, मेरी छुट्टी का मजा चौपट हो गया, क्योंकि मुझे तो हर तरह का मांसाहारी खाना पसंद था। मुझे यह समझ आने में 2 दिन लग गए कि यह गुरुजी की लीला थी। इसलिए 3रे दिन मैंने बहुत विनती की और गुरुजी महाराज से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं मांसाहारी आहार त्याग दूं तो मैं दिल्ली पहुंचते ही छोड़ दूंगी, लेकिन कृपा कर यहां तो मुझे उस भोजन का आनंद लेने दीजिए। अगली दोपहर मैंने खाने में हर मांसाहारी व्यंजन खाया, जिससे मेरे पति और हमारे मित्र हरपाल चावला, जो स्वयं भी खाने के शौकीन थे, बहुत प्रसन्न हुए। मैंने ऐसे खाया मानो वह मेरा आखिरी भोजन था। जब हम दिल्ली पहुंचे तो मुझे मांसाहारी भोजन खाने से त्वचा पर छपाकी और चकत्ते हो गए और खाना ठीक से ना पचने के कारण पेट खराब हो गया। लालच अच्छा नहीं होता। मेरा मार्ग मेरे गुरुजी ने निर्धारित कर दिया था। अध्याय 12, गुरु और उनके शिष्य का नाता। अपनी गुरुयाई के प्रारंभिक वर्षों में गुरुजी कहा करते थे, मेरी फोटो त्वाडे नाल गल्ला करेगी, मेरी फोटो तुमसे बात करेगी। कुछ साल बाद विदेश में रहने वाली संगत सत्संग सुनाते हुए बताती थी कि कैसे गुरुजी अपने स्वरूप के माध्यम से उनसे बात करते थे और स्वरूप से अमृत बहने लगता था। गुरु साहिब और उनकी संगत का संबंध एक बिना तार वाला फोन कनेक्शन है। भक्त दुनिया के किसी कोने में भी हों, लेकिन जिस क्षण उसका ध्यान गुरुजी की ओर होता है, गुरुजी जान जाते हैं। एक बार रोमा आंटी, सैटी और मैं दोपहर में खाने के लिए बाहर गए। सैटी परेशान थे और वे दोनों अपने दुखों के बारे में विस्तार पूर्वक बातें करते रहे। बाद में शाम को गुरुजी ने रोमा आंटी को डांटा और पूरा वार्तालाप दोहराया। अगले दिन अपनी बारी आने पर रोमा आंटी ने सैटी को गुरुजी की आवाज में डांटकर वह सब सुना दिया जो गुरुजी ने उससे कहा था। अद्भुत गुरुजी की दिव्यता के प्रसंग में लेफ्टिनेंट जनरल दीपिंदर सिंह के साथ घटी एक घटना ध्यान में आती है। अंकल बहुत सिर दर्द से पीड़ित एम्पायर एस्टेट पहुंचे। उन्होंने सुधा आंटी से 2 डिस्प्रिन मांगी, लेकिन आंटी के पास वह दवाई नहीं थी। दरबार संगत से भरा हुआ था, इसलिए अंकल चुपचाप बाहर बरामदे में जाकर बैठ गए, जहां से गुरुजी को वे नजर नहीं आ रहे थे।
दीपिंदर अंकल की सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके दवाई मांगने का अर्थ था कि उनका सिरदर्द काफी ज्यादा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, संगत का एक सदस्य अंकल के लिए गुरुजी की चाय वाला गिलास लाया। जैसे ही उन्होंने चाय खत्म की, उनका सिरदर्द ठीक हो गया। जब वे गिलास रखने के लिए रसोई की तरफ जा रहे थे, उन्होंने मुड़कर गुरुजी को देखा, जो बहुत ज्यादा सिर दर्द की शिकायत करते हुए अपने सिर को दुपट्टे से बांधकर बैठे थे। अंकल ने बहुत आदर के साथ गुरुजी के चरण छुए। यह एक तरफा रिश्ता नहीं है। अगर गुरुजी आपको सुन सकते हैं तो वे अपनी आवाज भी आपके कानों तक अवश्य पहुंचाएंगे। गुरुजी कहते थे, अपने भीतर मेरी आवाज सुनने के लिए तुम्हें बाहरी दुनिया छोड़कर अपने भीतर झांकना होगा। मैं अपने सब भक्तों के अंतर मन में हूं। उनका कहना था कि उनके सच्चे अनुयायी हमेशा अपने भीतर उन्हें सुन पाएंगे, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। गुरुजी ने समझाया कि जो आवाज बाएं कान में आए उसे हमें नहीं सुनना, लेकिन दाएं कान में सुनाई देने वाली आवाज मार्गदर्शक है और उसमें वे केंद्रित होंगे। उन्होंने कहा, पहले कोई गल्ला नहीं कर देसी, मन तो गल्ला कर देसी। यानी कि पुराने जमाने में लोग उच्चारित शब्दों के बजाय टेलीपैथिक तरीके से एक दूसरे से बात कर लेते थे। गुरुजी ने समझाया कि यह संवाद का सबसे शुद्ध तरीका है और आने वाले सालों में भी उनकी पक्की संगत टेलीपैथी के द्वारा एक दूसरे से संपर्क रख सकेगी। गुरु साहिब ने अपनी संगत के लिए ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं। आज गुरु साहिब के समाधि लेने के 4 वर्ष बाद हमें उनकी पूजा के हर स्थान पर उनकी मौजूदगी नजर आती है। उन्होंने बड़े मंदिर में भी दर्शन दिए हैं, जहां पर संगत ने विभिन्न अवसरों पर उनकी उपस्थिति की तस्वीर खींची है। पूरे विश्व में होने वाले गुरु जी के सत्संगों पर उनके स्वरूप से अमृत बहता है। उनकी दिव्य खुशबू दरबार को महका देती है। रोटियों पर और ज्योत की लौ में ओम नजर आते हैं। हमारे घर पर गुरुजी के कमरे में हमने कई बार उनकी गद्दी पर उनके विराजमान होने के और उनके हाथ और पैर के दिव्य संकेत देखे हैं। हम सभी पूर्ण गुरु को पाकर धन्य हैं। जय गुरुजी। अध्याय 13। आरती की थाली। गुरु साहिब को दिए, ज्योत, अगरबत्ती और धूप बहुत पसंद हैं। वे कहते थे, घी की सुगंध ईश्वर को प्रसन्न करती है और अगरबत्ती और धूप की खुशबू दिव्यता को रिझाती है। साथ ही वह प्रार्थना करते हुए इंसान की आत्मा के बोझ के हल्के होने का एहसास दिलाती है। मंदिर में शिवजी के आगे रखा हुआ दिया आरती वाले दिए से अलग होता था। गुरुजी को पीतल बहुत पसंद था और उन्होंने आरती के लिए पीतल की थाली का प्रयोग करने को कहा। एक बार उन्होंने मुझे आरती की थाली सजाने का तरीका सिखाने के लिए बदन आंटी को मंदिर भेजा। आरती की थाली, जिस पर केसर को पानी की बूंदों में मिलाकर सजावट की गई है, आरती की थाली में सीधी खड़ी बत्ती वाला घी का दिया, मौली, पानी की बूंदों में कच्चे चावल के दाने और केसर मिलाकर बनाया हुआ टीका, मिठाई के 5 टुकड़े, धूप। हम पहले गुरुजी की कलाई पर मौली बांधते थे, फिर उनके माथे पर टीका लगाकर उनकी आरती, शिवजी की आरती करते थे। अध्याय 14। लोटा, तांबे का बर्तन। वह चमकदार और बिना किसी गड्ढे के होना चाहिए। लोटे का ऐसा होना जरूरी था। गुरुजी उसे अपना आशीर्वाद देकर कहते, आपे आप साफ करना है, नौकरा नूनी देना। वे कहते थे कि अगर मैं इस लोटे को अपना आशीर्वाद देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं, तो तुम भी इसे स्वयं साफ करने के लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हो। या तो राख नाल साफ करो या नींबू ते नमक नाल। जद तुसी अपने आप साफ कर दो, तुसी मेरा ना लेन दो, मैनू याद कर दो, उस पल विच त्वाडे कोल आके त्वानू फिर तो ब्लेस कर जांदा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने लोटे को साफ करने में बहुत आलसी थी। गुरुजी लोटा हाथों में लेकर उसे अपना आशीर्वाद देते थे। उन्होंने हमें समझाया कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले लोटे का आधा जल पी लें और फिर नहाकर बाकी का जल अपने ऊपर डाल लें।
अध्याय 15 सत्संग। सत्संग का अर्थ है सच्चा साथ या सच्चा जन समूह। सच्चा यानी कि गुरु और जन समूह का अर्थ हम भक्त जन। एक ऐसी सभा जिसमें हम दिव्यता का चिंतन और ध्यान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और अपने दिव्य अनुभव सुनते और सुनाते हैं। वह एक कक्षा की तरह है जहां हमें शिक्षा मिलती है और गुरु जी के संदेश दिए जाते हैं, जो कि केवल हमारे लिए नहीं होते हैं बल्कि उचित समय आने पर दूसरों को देने जरूरी होते हैं। हमारे गुरु साहेब बहुत आगे का सोचकर योजना बनाते थे। वे यह भली भांति जानते थे कि वे एक दिन अपना शरीर त्याग देंगे और इसलिए उनकी कक्षा को ऐसे पाठ पढ़ाने आवश्यक थे जो उसी तरह से कई बार दोहराए जा सकें जिस तरह से उनकी शारीरिक मौजूदगी के दौरान कहे गए हों, क्योंकि उन सत्संगों में किसी अन्य संगत के लिए संदेश होगा, उस इंसान को आश्वासन देने के लिए। कभी कभी किसी किसी भक्त को अनेक बार कोई सत्संग दोहराने के लिए कहा जाता था और संगत उबने लगती थी। हम सब यही महसूस करते थे कि यह तो हमने पहले सुना हुआ है। फिर एक दिन गुरुजी ने हमें समझाया, सत्संग तुम सबकी दवाई है और बार बार वही सत्संग सुनकर तुम्हें आवश्यक आशीर्वाद रूपी खुराक मिल रही है। इसलिए धीरज धर के सत्संग सुनो, क्योंकि तुम्हें उससे फायदा होगा। ये दवाई रूपी सत्संग तुम्हारे तक सीमित रखने के लिए नहीं है बल्कि सभी को सुनाने के लिए होते हैं। सारे परिवार को लेकर आओ, तभी तो पूरा आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी बिना किसी संशय के कहते थे कि सत्संग में पूरे परिवार को आना चाहिए, ना कि परिवार के केवल एक सदस्य को, सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें उन्होंने स्वयं अलग अलग दिनों पर आने की आज्ञा दी थी। उन्होंने खास कहा कि पूरा आशीर्वाद तभी मिलता है जब पूरा परिवार उनके सत्संग के लिए आता है। गुरुजी कहते थे कि अगर मैं समय पर आकर तुम्हारे लिए बैठ सकता हूं तो तुम भी समय पर आकर मेरे लिए बैठ सकते हो। यह मत देखो कि तुम्हारे आस पास किसने क्या पहना है या कौन क्या कर रहा है, बल्कि मुझ पर ध्यान दो, मेरे नजारे देखो। अगर हमें चाय प्रसाद दोबारा मिल जाता था तो हम अपने आप को धन्य समझते थे। गुरुजी इस बात की ओर पूरा ध्यान देते थे कि हर भक्त को चाय प्रसाद का कम से कम एक गिलास जरूर मिले। उन्होंने कहा, मैं सबको लंगर प्रसाद के द्वारा आशीर्वाद देता हूँ, इसलिए उसे दवाई मानकर बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए और पूरा खत्म करना चाहिए। लंगर हमेशा बिल्कुल सादा होता था, एक दाल, एक सब्जी, रोटी, अचार या रायता और कुछ मीठा। लसन और प्याज की मनाही नहीं थी, बस एक नियम था कि मिर्चें और मिठाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लंगर हमेशा थालियों में परोसा जाता था और चार जन इकट्ठे बैठकर एक थाली से खाते थे। जहां हम सब जाति, वर्ग, नाम, शक्ल सूरत के भेदभाव के बिना एक जैसे होकर खाते हैं, हम सब लंगर खाकर एक जैसा आशीर्वाद पाते हैं। केवल त्योहार या किसी खास दिन पर लंगर बुफे की तरह परोसा जाता था। गुरुजी ने हमारा पालन पोषण इस तरह से किया। गुरुजी कहा करते थे, जब तुम मुझे मिलने आते हो तो नहा धोकर अपने सबसे बेहतरीन कपड़े डालो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं स्नान करके तुम सबके लिए तैयार होता हूं, क्योंकि सत्संग में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। अक्ल और रफल बाहर छोड़कर आओ, अपने किंतु परंतु और अहम को अपने जूतों के साथ बाहर छोड़कर आओ। अध्याय 16 जय गुरुजी। गुरुजी महाराज अपनी संगत से ऐसे प्रेम करते हैं जैसे एक पिता अपनी संतान से। हम वाकई में धन्य हैं और उनके लाड प्यार से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि आज भी वे हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करके हमें शिक्षा देते हैं। किताबें, संदेश, अखबार, बच्चे और संयोग से सहसा ही लोग आकर हमें अनजाने में उनका पैगाम देते हैं और रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगता है। सालों साल की प्रार्थना, सब्र और दृढ़ता बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु जी की दी हुई हर सीख आपका इम्तिहान लेती है और आपको भीतर से हिला सकती है। साथ ही वे एक ऐसे बालक के जैसे हैं जो हमेशा जानना चाहता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एक बार जब गुरुजी लंगर खा रहे थे, तब नितिन जोशी, जिनकी आयु तब 13 साल की थी, उनकी उपस्थिति में बैठे थे। अचानक गुरु साहिब ने एक साबुत हरी मिर्च उठाई और उन्हें खाने के लिए दी। नितिन ने आराम से मिर्ची खा ली और जीभ तप जाने और आंखों में आंसू भर जाने के बावजूद भी उन्होंने गुरुजी से कोई सवाल नहीं किया और उसे गुरुजी का प्रसाद माना। धन्य था वह पल जब गुरुजी महाराज ने हम जैसे गंदे बर्तनों को स्वीकारा, हमें अपनाया और हमें निर्मल प्यार दिया। उनकी दिव्य आभा में हम हर दर्द का अनुभव सह लेते हैं, हर खुशी में हंसते हैं, वक्त की धारा के संग बहते हैं और गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारी जिंदगी में होता है वह सब हमारे नाथ ने हमें सिखाने के लिए हमारी नियति में लिखा है। सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर हम अपने पिता से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं और विनती करते हैं कि वे हमारे पथ को सरल बनाएं। हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने पास आने का रास्ता दिखाएं।
अध्याय 17। मेरे मौला, कहते हैं तेरी दुनिया है सुंदर, पर आपके साथ यहां पर उससे बढ़के क्या? वो समय जो समय न था, वो दिन जो न दिन था न रात, एक अद्भुत मदहोशी का आलम जिसमें बस तू ही तू और कोई मैं न था। फिर ये सपना क्यों टूटा, क्यों तुम रूठे? एक अरदास, एक बिनती, एक फरियाद मेरे मौला। अब लौटा दो वे सुहाने पल, अब लौटा दो वे कोमल चरण, अब लौटा दो चरणों की खुशबू और असीसें, कि मन हो जाए अमृत और मेरा रोम रोम गाए। तू ही तू है और बस तू ही।
अध्याय 18। मेरे दिव्य परम पिता, हर दात के लिए आपका शुक्राना, विनम्र आभार। शुक्र गुजार हूं मैं अपने साथी, अपने पति सैटी की, जिन्होंने अपने सहयोग से मुझे गुरुजी की कृपा के आंचल में खिलने का शुभ अवसर दिया और हमारे रिश्ते में गुरुजी को सर्वप्रथम माना। मैं बहुत आभारी हूं आयशा की। मेरी सुंदर आयशा, तुम किसी भी माँ के लिए एक सच्ची पावन देन हो, हमारी जिंदगी में आने का शुक्राना। नताशा, इंतजार है मुझे तुम्हें फिर से देखने का और अपनी बाहों में लेने का। नूर, तुम ही तो मेरे जीने की वजह हो, शुक्राना। मेरी माताएं गुड्डी और मीत, मुझे स्वीकार कर अपनी ममता देने का प्यार भरा धन्यवाद। मेरे पिता भूपिंदर और रौनक, बहुत याद आती है आप दोनों की और आपके स्नेह की।
पिंटो, गिग्गी, सैरा, तुम्हारे सब्र के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आयशा, गिग्गी और लीना सबरवाल, आपको खास तौर से मेरा धन्यवाद जो आपने मुझे इस पावन पुस्तक में इतना सहयोग दिया। नमिता ग्रोवर और गीता एंथनी, आपको आपके दिए मार्गदर्शन के लिए मेरा शुक्रिया। नवीन तलवार, मेरी हिंदी की कविता को रूहानी सांसें देने का शुक्राना। रेनू पुष्करना आंटी को उनके द्वारा किए गए संपादन के लिए धन्यवाद। गुरुजी की कृपा से यह प्रस्तुतिकरण संपूर्ण हुआ, त्रुटियों के लिए क्षमा याचना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी।